नमस्ते, मैं आरव हूँ। 983 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। स्पेकुलेटिव एवरीथिंग डिजाइन फिक्शन एंड सोशल ड्रीमिंग, एंथनी डन और फियोना रेबी की डिजाइन चिंतन पर केंद्रित प्रभावशाली पुस्तक है। यह पारंपरिक उत्पाद डिजाइन की उस धारणा को चुनौती देती है जिसमें सफलता का अर्थ उपयोग में आसानी, बाजार योग्यता और तत्काल समाधान माना जाता है। लेखक डिजाइन को वस्तुएं बनाने की तकनीक भर नहीं बल्कि विचारों, बहसों और वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्थाओं को सामने लाने वाला माध्यम मानते हैं। पुस्तक का मूल आग्रह भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना नहीं है, इसके बजाय यह है ऐसे क्या हो अगर प्रश्नों के माध्यम से संभावित संसारों की कल्पना करती है। कला, वास्तुकला, सिनेमा, साहित्य, तकनीक, दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के उदाहरणों को मिलाकर लेखक दिखाते हैं कि काल्पनिक वस्तुएं वर्तमान की मान्यताओं को अधिक स्पष्ट बना सकती है। यह कोई चरणबद्ध व्यावसायिक डिजाइन मैनुअल नहीं बल्कि एक घोषणा पत्र सरीखी वैचारिक पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को उपभोक्ता की सीमित भूमिका से बाहर निकालकर नागरिक, सहभागी और भविष्य के विकल्पों पर विचार करने वाले व्यक्ति के रूप में संबोधित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पूर्वानुमान के बजाय क्या हो अगर वाले प्रश्नों की पद्धति डन और रेबी भविष्य को ट्रेंड, आंकड़ों और बाजार संकेतों के सीधे विस्तार के रूप में देखने पर संदेह करते हैं। उनके अनुसार ऐसी भविष्यवाणियां अक्सर वर्तमान व्यवस्था को ही अपरिहार्य मान लेती है। यदि कोई संस्था केवल यह पूछती है कि मौजूदा तकनीक अगले 5 वर्षों में कितनी तेज, सस्ती या सर्वव्यापी होगी, तो वह यह नहीं पूछती कि वह तकनीक किसके हित में होगी, किसे बाहर रखेगी और उसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे। स्पेकुलेटिव डिजाइन इस सीमा को क्या हो अगर जैसे प्रश्नों से तोड़ता है। ये प्रश्न भविष्य के बारे में अंतिम दावा नहीं करते बल्कि चर्चा के लिए एक परिस्थिति निर्मित करते हैं। पुस्तक में संभावना का अर्थ केवल आशावादी तकनीकी प्रगति नहीं है। एक परिदृश्य असुविधाजनक, विचित्र या भयावह भी हो सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सहमति पाना नहीं, छिपी हुई धारणाओं को दिखाई देना है। इस दृष्टि में काल्पनिक भविष्य वर्तमान की आलोचना का उपकरण बनता है। उदाहरण के लिए, किसी नई जैव तकनीक पर बना डिजाइन यह पूछ सकता है कि भोजन, शरीर या प्रकृति के प्रति हमारी नैतिक सीमाएं कहां हैं। इस तरह लेखक भविष्यवाणी की निश्चितता के बदले कल्पना की बहुलता को महत्व देते हैं। पाठक को तैयार उत्तर नहीं मिलता बल्कि यह समझ मिलती है कि बेहतर भविष्य चुनने से पहले कई अलग भविष्य देखने और उन पर सार्वजनिक रूप से बहस करने की आवश्यकता है। दूसरा, उपभोक्ता केंद्रित समाधान से नागरिक केंद्रित संवाद तक। पुस्तक का एक केंद्रीय तर्क यह है कि मुख्यधारा डिजाइन अक्सर व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में देखता है। इस ढांचे में समस्या को सुविधा, दक्षता या खरीदारी की इच्छा में बदल दिया जाता है और डिजाइनर का काम उत्पाद के माध्यम से समाधान देना बन जाता है। डन और रेबी इस उपयोगी परंतु संकीर्ण मॉडल के सामने नागरिक की अवधारणा रखते हैं। नागरिक केवल वस्तुओं का उपयोगकर्ता नहीं होता बल्कि सामाजिक नियमों, तकनीकी व्यवस्थाओं और सामूहिक भविष्य पर राय रखने वाला व्यक्ति होता है। इस बदलाव का असर डिजाइन के उद्देश्य पर पड़ता है। स्पेकुलेटिव परियोजना को तुरंत उत्पादन, बिक्री या व्यापक स्वीकृति तक पहुंचना जरूरी नहीं। वह किसी मान्यता को चुनौती देने, असहमति पैदा करने या नीति, संस्कृति और रोजमर्रा की आदतों के बीच संबंध दिखाने में भी सफल हो सकती है। लेखक के लिए डिजाइन की आलोचनात्मक शक्ति इसी में है कि वह प्रचलित व्यवस्था को प्राकृतिक या तटस्थ मानने से रोकता है। तकनीक के बारे में निर्णय केवल इंजीनियरिंग की क्षमता या बाजार की मांग से नहीं होते, उनमें सत्ता, संसाधन, नैतिकता और जीवन मूल्य भी शामिल रहते हैं। फिर भी पुस्तक हर व्यावहारिक डिजाइन को नकारती नहीं। इसका लक्ष्य समाधान उन्मुख कार्य के समानांतर एक दूसरा क्षेत्र बनाना है जहां डिजाइन प्रश्न पूछ सके। यह विभाजन पाठक को समझाता है कि उपयोगिता और आलोचना परस्पर शत्रु नहीं है, लेकिन दोनों के लक्ष्य, मूल्यांकन के मानदंड और दर्शक अलग हो सकते हैं। तीसरा, डिजाइन फिक्शन और प्रॉप्स के जरिए काल्पनिक संसार को विश्वसनीय बनाना। स्पेकुलेटिव एवरीथिंग में फिक्शन सजावट या प्रचार कथा नहीं है, वह डिजाइन की कार्य पद्धति का आवश्यक हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि किसी संभावित संसार को समझने के लिए केवल सिद्धांत या भविष्य की घोषणा पर्याप्त नहीं होती, लोगों को उस संसार के छोटे ठोस संकेत चाहिए होते हैं। इन्हें प्रॉप्स कहा जा सकता है, जैसे उत्पाद का नमूना, स्केच, विज्ञापन, निर्देश पुस्तिका, तस्वीर, वीडियो या किसी काल्पनिक संस्था का दस्तावेज। ऐसे संकेत दर्शक को उस कल्पित परिस्थिति में प्रवेश करने का आधार देते हैं। प्रॉप का प्रभाव इस बात में है कि वह पूरी दुनिया को समझाने के बजाय एक प्रश्न को अनुभव योग्य बनाता है। जब दर्शक किसी अपरिचित वस्तु को देखता है तो वह उसके उपयोग, मालिक, नियम और परिणाम की कल्पना करने लगता है। इस प्रक्रिया में उसे कुछ समय के लिए अविश्वास स्थगित करना पड़ता है। वस्तु वास्तविक होने का दावा नहीं करती, फिर भी वह इतनी सुसंगत होती है कि विचार विमर्श शुरू हो सके। लेखक इसे अपरिचितता की सौंदर्य भाषा से जोड़ते हैं। यह तरीका डिजाइन को साहित्य, फिल्म और प्रदर्शनी कला के निकट ले जाता है, पर उसे केवल कला में विलीन नहीं करता। वस्तु की बनावट, कार्य और प्रस्तुति अब भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से कल्पना को विश्वसनीयता मिलती है। पुस्तक के विविध उदाहरण, जिनमें शरीर, पर्यावरण और उभरती तकनीकों से जुड़े उपकरण शामिल हैं, दिखाते हैं कि प्रॉप्स अमूर्त नैतिक प्रश्नों को रोजमर्रा की चीजों के रूप में सामने ला सकते हैं। चौथा, संभावित, संभाव्य और वांछनीय भविष्य के बीच चुनाव। लेखक भविष्य को एक सीधी समय रेखा की तरह नहीं देखते। पुस्तक में भविष्य के अलग क्षेत्रों पर विचार किया गया है, जिनमें संभाव्य, संभव और वांछनीय दिशाओं का अंतर महत्वपूर्ण है। संभाव्य भविष्य वह है जो वर्तमान ज्ञान, संस्थाओं और तकनीकी प्रवृत्तियों के आधार पर होने की संभावना रखता है। संभव भविष्य उससे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं जो आज असामान्य या दूर की लगती है। वांछनीय भविष्य इन दोनों से अलग प्रश्न उठाता है, क्या कोई भविष्य संभव है या संभवतः आएगा, से आगे बढ़कर पूछता है कि उसे चुनना चाहिए या नहीं। यह भेद इसलिए उपयोगी है क्योंकि बाजार और नीति निर्माण प्रायः संभाव्य को ही वांछनीय मान लेते हैं। मसलन, यदि निगरानी या स्वचालन तकनीकी रूप से फैल सकता है तो उसका फैलना अपने आप सामाजिक प्रगति नहीं बन जाता। स्पेकुलेटिव डिजाइन इन श्रेणियों के बीच दूरी बनाकर मूल्य निर्णयों को स्पष्ट करता है। वह दर्शाता है कि हर तकनीकी संभावना के भीतर संसाधनों का वितरण, नियंत्रण की व्यवस्था और मानव संबंधों की कोई न कोई कल्पना छिपी रहती है। पुस्तक का उद्देश्य किसी एक आदर्श यूटोपिया की रूपरेखा देना भी नहीं है। लेखक यूटोपिया और डिस्टोपिया की सरल दो ध्रुवीयता से बचते हुए अनेक छोटे परिदृश्यों की जगह बनाते हैं। इससे पाठक विकल्पों की तुलना कर सकता है और यह पहचान सकता है कि उसकी अपनी पसंद किन सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। डिजाइन यह भविष्य का उत्तर नहीं, सामूहिक निर्णय की तैयारी बनता है। अंत में महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ राजनीतिक और पेशेवर सीमाएं। यह पुस्तक स्पेकुलेटिव डिजाइन को व्यवस्थित भाषा, उदाहरण और महत्व देने वाली आरंभिक प्रमुख कृतियों में गिनी जाती है। इसकी ताकत इसका अंतर्विषयी विस्तार है। डन और रेबी उत्पाद, प्रदर्शनी कला, वास्तुकला, फोटोग्राफी और कथा के बीच संबंध बनाते हैं, जिससे डिजाइनर को अपने माध्यम की सीमाओं से बाहर सोचने का अवसर मिलता है। साथ ही पुस्तक का दृश्य और वस्तु आधारित तरीका कठिन दार्शनिक प्रश्नों को अपेक्षाकृत सुलभ बनाता है। यह विशेष रूप से डिजाइन शिक्षा में उपयोगी रहा है, क्योंकि विद्यार्थी किसी विचार को केवल निबंध में नहीं बल्कि दृश्य परिस्थिति और वस्तु के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। फिर भी इसकी सीमाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी वस्तु का अजीब या भविष्यवादी दिखना अपने आप राजनीतिक आलोचना नहीं बनाता। यदि परियोजना यह नहीं बताती कि वह किसके अनुभव, श्रम, संसाधन और इतिहास को केंद्र में रख रही है, तो वह केवल आकर्षक कल्पना रह सकती है। आलोचकों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि क्या कुछ स्पेकुलेटिव कार्य उस विशेषाधिकारपूर्ण दृष्टि को दोहराते हैं जिसमें भविष्य गढ़ने और प्रदर्शित करने की क्षमता सीमित संस्थानों के पास रहती है। इसलिए पुस्तक को अंतिम राजनीतिक कार्यक्रम की तरह पढ़ने के बजाय एक शक्तिशाली आरंभ बिंदु की तरह पढ़ना अधिक उचित है। इसकी पद्धति तब अधिक सार्थक होती है जब शोध, प्रभावित समुदायों की भागीदारी और सत्ता संबंधों की स्पष्ट जांच उसके साथ जोड़ी जाए। यह सावधानी पुस्तक के मूल लक्ष्य, अधिक खुली और आलोचनात्मक भविष्य कल्पना, को कमजोर नहीं बल्कि अधिक जवाबदेह बनाती है। निष्कर्ष में, स्पेकुलेटिव एवरीथिंग उन डिजाइनरों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, कलाकारों, वास्तुकारों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजाइन को केवल समस्या सुलझाने या उत्पाद विकसित करने तक सीमित नहीं मानते। तकनीक, जलवायु, जैव विज्ञान, निगरानी, भोजन या सामाजिक संस्थाओं के भविष्य पर काम करने वाले पाठकों को इससे प्रश्न गढ़ने की एक अलग भाषा मिलती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह नहीं कि यह किसी सेवा या वस्तु को बाजार में उतारने की विधि सिखाती है। लाभ यह है कि यह किसी प्रस्ताव के पीछे छिपी मान्यताओं को पहचानने, वैकल्पिक परिदृश्य बनाने और चर्चा के लिए ठोस प्रॉप्स तैयार करने की दृष्टि देती है। यह पुस्तक समान विषय की भविष्यवाणी, ट्रेंड रिपोर्ट या नवाचार मार्गदर्शिका से अलग खड़ी होती है, क्योंकि इसका केंद्र यह नहीं कि भविष्य में क्या अवश्य होगा। इसका केंद्र यह है कि किन भविष्य कल्पनाओं को सामान्य, लाभकारी या अपरिहार्य बताया जा रहा है और उनके विकल्प कैसे सोचे जा सकते हैं। डन और रेवी फिक्शन को पलायन नहीं, आलोचनात्मक जांच का माध्यम बनाते हैं। उनकी प्रस्तुतियाँ कभी जानबूझकर असुविधाजनक लग सकती है, पर वही असुविधा पाठक को अपनी सहज धारणाओं पर लौटकर सोचने के लिए बाध्य करती है। पुस्तक को पढ़ते समय इसकी राजनीतिक सीमाओं और प्रतिनिधित्व के प्रश्नों को भी साथ रखना चाहिए। फिर भी डिजाइन, कथा और सामाजिक कल्पना को एक ही ढांचे में जोड़ने की इसकी क्षमता इसे क्षेत्र की आधारभूत कृतियों में रखती है। यह तैयार भविष्य नहीं देती, बल्कि भविष्य चुनने की जिम्मेदारी को अधिक स्पष्ट करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एंथनी डन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।